नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। विदेशी कोषों की सतत निकासी के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर फैसले से पहले सतर्क हैं। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 193.99 अंक गिरकर 63,680.94 पर आ गया। वहीं एनएससी का निफ्टी 47 अंक फिसलकर 19,032.60 रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और नेस्ले के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स के शेयर फायदे में रहे। देश में कमर्शियल गैस के दाम में इजाफा कर दिया गया है। बुधवार से कमर्शियल गैस के दाम में पेट्रोलियम कंपनियों ने 100 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब 19 किलोग्राम वाली कमर्शियल गैस दिल्ली में 1833 रुपए में मिलेगी। मुंबई में इसकी कीमत 1785.50 रुपए होगी। कोलकाता में 1943 रुपए और चेन्नई में 1999.50 रुपए कर दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में महीने भर में 300 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया है। पिछले महीने की पहली ही तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 209 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि 14 किलो वाली घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पिछले महीने इसकी कीमतों में कुछ कमी भी की थी। एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 17% बढ़कर 5,108 इकाई रही। एमजी मोटर की ओर से जारी एक बयान के अनुसार कंपनी की कुल बिक्री में बिजली चालित वाहनों का हिस्सा करीब 25% रहा है। कंपनी ने कहा कि उसके सभी मॉडल पर ऑफर होने के चलते बिक्री उत्साहजनक रही। देश की दूसरी बड़ी दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 37.5% घटकर 1,341 करोड़ रुपए रहा। एयरटेल का पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 2,145 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने बताया कि एक बारगी असाधारण शुल्क लगने से उसका शुद्ध लाभ कम हुआ है। भारतीय एयरटेल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 44.2% बढ़कर 2,960 करोड़ रुपए रही। दूसरी तिमाही में राजस्व 7.3% बढ़कर 37,044 करोड़ रुपए रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि सितंबर में उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की वृद्धि दर में गिरावट रही, जबकि कृषि तथा सेवा क्षेत्रों में सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक आवास के लिए कर्ज में नरमी होने के कारण सितंबर सन 2023 में व्यक्तिगत ऋण वृद्धि भी घटकर सालाना आधार पर 18.2% रह गई। ये एक साल पहले इसी माह में 19.4% थी। उद्योग का ऋण आवंटन सितंबर में सालाना आधार पर 6.5% की दर से बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में ये 12.6% बढ़ा था। इस दौरान बुनियादी धातु और धातु उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि में तेजी आई, जबकि इंजीनियरिंग, रसायन और रासायनिक उत्पादों तथा बुनियादी ढांचे के ऋण में गिरावट हुई। देश में अल नीनो के असर के बीच कम बुआई होने से देश का कपास उत्पादन विपणन सत्र सन 2023-24 में 2,95,01,000 गांठ रहने का अनुमान है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। सीएआई ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कपास विपणन सत्र अक्टूबर से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। कपास की एक गांठ 170 किलोग्राम की होती है। विपणन सत्र सन 2023-24 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान विपणन सत्र सन 2022-23 के 3,18,09,000 गांठ से 7.49% कम है। ये अनुमान विपणन सत्र सन 2023-24 के लिए 3,16,05,000 गांठ के सरकारी अनुमान से भी कम है। सीआई ने अपना पहला अनुमान जारी करते हुए कहा, विपणन सत्र सन 2008-09 के बाद ये भारतीय कपास की सबसे कम पैदावार होने वाली है। उसने कहा कि कपास की बुआई का कुल रकबा 5.5% कम है और अल नीनो की वजह से प्रतिकूल मौसम के कारण इसकी उपज में भी 20% तक की गिरावट आने की आशंका है। प्याज के निर्यात पर अंकुश लगने के बाद प्रमुख आपूर्ति वाले राज्य महाराष्ट्र में थोक कीमतें नरम पड़ने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्याज मंगलवार को भी महंगा बना रहा, क्योंकि औसत खुदरा कीमत 78 रुपये प्रति किलो बनी हुई है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय औसत खुदरा प्याज की कीमतें सोमवार के मुकाबले 3.40 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर मंगलवार को 53.75 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की कीमतें 25 अक्टूबर से बढ़नी शुरू हुई। उस समय दरें 40 रुपये प्रति किलोग्राम थीं, जो 29 अक्टूबर को दोगुनी होकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने और फॉर्च्यून 500 कंपनियों से अधिकतम निवेश हासिल करने के लिए मंगलवार को प्रोत्साहन नीति सन 2023 को मंजूरी दी। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में अनुमोदित प्रोत्साहन नीति सन 2023 के तहत कुछ खास सुविधाओं और रियायतों की पेशकश की गई है। खन्ना ने कहा कि इस प्रोत्साहन नीति में पात्र परियोजनाओं को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की वर्तमान आवंटन दरों में रियायत देते हुए भूमि आवंटित की जाएगी। इसके अलावा पात्र परियोजनाओं को SGST की 100% भरपाई की जाएगी, जो पात्र पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा के बराबर होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।